नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव अम्बेडकर नगर मोबाइल वाणी में आप सभी के लिए एक छोटी और प्यारी मज़ेदार कहानी लाया हूँ, जिसका नाम है विक्रम बेताल की कहानी। विक्रम बेताल की प्रारंभिक कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैनी नाम के राज्य में राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, कर्तव्य निष्ठा और दानशीलता के चर्चे पूरे देश में मशहूर थे। यही कारण था कि दूर दूर के लोग उनके दरबार में न्याय मांगने आया करते थे। राजा हर दिन अपने दरबार में लोगों की तकलीफों को सुनते और उनका निवारण किया करते थे। एक दिन की बात है, राज दरबार लगा हुआ था। तभी एक भिक्षुक विक्रमादित्य के दरबार में आता है और एक फल राजा को देकर चला जाता है। राजा उस फल को कोषाध्यक्ष को देते हैं और उस दिन के बाद हर रोज वह भिक्षुक राजा के दरबार में आने लगा। उसका रोज का काम यही था कि राजा को फल देता और चुपचाप चला जाता। राजा भी प्रत्येक दिन भिक्षुक द्वारा दिया गया फल कोषाध्यक्ष को थमा देते। ऐसे करते करते करीब 10 साल बीत गए। एक दिन जब भिक्षुक फिर राजा के दरबार में आकर फल देता, तो इस बार राजा फल कोषाध्यक्ष को न देकर वहाँ मौजूद एक पालतू बंदर के बच्चे को दे देते हैं। यह बंदर किसी सुरक्षा कर्मी का था, जो छूटकर अचानक राजा के पास आ जाता है। जब उस फल को खाने के लिए तोड़ता है, तो उस फल के बीच एक बहुमूल्य रत्न निकलता है। उस रत्न की चमक को देखकर राज दरबार में मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। राजा भी यह नज़ारा देखकर आश्चर्यचकित में पड़ जाता है। राजा कोषाध्यक्ष को इससे पूर्व भिक्षुक द्वारा दिए गए सभी फलों के बारे में पूछता है। राजा के पूछने पर कोषाध्यक्ष बताता है कि महाराज, मैंने उस सभी फलों को राजकोष में सुरक्षित रखवा दिया है। मैं उन सभी फलों को लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद कोषाध्यक्ष राजा को आकर बताता है कि सभी फल गल गए हैं, उनके स्थान पर बहुमूल्य रत्न बचे हुए हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश होता है और कोषाध्यक्ष को सारे रत्न सौंप देता है। अगली बार जब भिक्षुक फल लेकर दोबारा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचता है, तो राजा कहते हैं, भिक्षुक, मैं आपका फल तब तक ग्रहण नहीं करूंगा। मतलब राजा कहते हैं, भिक्षुक, मैं आपका फल तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप यह नहीं बताते कि हर दिन आप इतनी बहुमूल्य भेंट मुझे क्यों अर्पित करते हैं। राजा की बात सुनकर भिक्षुक उन्हें एकांत स्थान पर चलने को कहते हैं। एकांत में जाकर भिक्षुक राजा को बताता है कि मुझे मंत्र साधना करनी है और उस साधना के लिए मुझे एक वीर पुरुष की जरूरत है। चूंकि मुझे तुमसे वीर दूसरा कोई नहीं मिल सकता है, इसलिए यह बहुमूल्य उपहार तुम्हें देता हूँ। भिक्षुक की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य उसकी सहायता करने का वचन देते हैं। तब भिक्षुक राजा को बताता है कि मैं अगली अमावस्या की रात को उसे पास के शमशान में आना होगा, जहां वह मंत्र साधना की तैयारी करेगा। इतना कहकर भिक्षुक वहां से चला जाता है। अमावस्या का दिन आते ही राजा को भिक्षुक की बातें याद आती हैं। यह वचन सुनकर शमशान पहुंच जाते हैं। राजा को देख भिक्षुक बहुत प्रसन्न होता है। भिक्षुक कहता है कि हे राजन, तुम यहाँ आए मैं बहुत खुश हुआ हूँ, तुम्हारा वचन याद रहा। अब यहाँ से पूर्व की दिशा में जाओ, वहाँ एक महाशमशान मिलेगा। उस महाशमशान में एक शीशम का एक विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उस मुर्दे को तुम्हें मेरे पास लेकर आना है। भिक्षुक की बात सुनकर राजा सीधे उस मुर्दे को लेने चल देते हैं। महाशमशान में पहुंचने के बाद राजा को एक विशाल शीशम का पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ दिखाई देता है। राजा अपनी तलवार खींचता है और पेड़ से बधी डोर काट देता है, और डोर काटते ही मुर्दा जमीन पर आ गिरता है और जोर से चीखने की आवाज आती है। दर्द भरी चीख सुनकर राजा को लगता है कि शायद यह मुर्दा नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान है। थोड़ी देर बाद जब मुर्दा तेजी से हंसने लगता है और फिर पेड़ पर जाकर लटक जाता है, तो विक्रमादित्य समझ जाते हैं कि इस मुर्दे पर बेताल चढ़ा है। काफी कोशिश के बाद विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतार अपने कंधे पर टांग लेते हैं। इस पर बेताल विक्रमादित्य से कहते हैं, विक्रम, मैं तेरे साहस को मान गया, तू बड़ा ही पराक्रमी है, मैं तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पूरे रास्ते में तू कुछ भी नहीं बोलेगा। विक्रम सिर हिलाकर हाँ मैं